अरुणिमा और आस्तिक दोनों डॉक्टर की केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर के हाथों में एक ब्रेन का एक्सरे था जो वो लाइट के नीचे देख रहे थे। अरुणिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ लिया तो आस्तिक ने भी अरुणिमा के हाथों को कसके पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहां पर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अरुणिमा की घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने ब्रेन को एक लाइट एलईडी के नीचे रखते हुए आस्तिक और अरुणिमा को देखकर कहा, देखिए मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली दूंगा। दरअसल बात ऐसी है कि आपका बेटा आकाश वो और बच्चों से अलग है, या यूं कहें कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अरुणिमा की घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। आस्तिक की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने अरुणिमा के हाथों को थामते हुए डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर आप साफ साफ बताइए बात क्या है, अगर हमारा बच्चा अलग है तो इसमें बुराई क्या है? बच्चे तो अलग होते ही हैं ना, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं। अगर हमारा आकाश अलग है, या तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा या फिर एवरेज होगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो बच्चों की खुद की मेंटालिटी होती है। डॉक्टर अपने चश्मा उतारते हैं और कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर रायचंद, बच्चों का परफेक्ट होना या फिर उनका इमेच्योर होना ये बच्चों के खुद के हाथ में होता है, लेकिन आकाश के केस में ये अलग है। आकाश जो और बच्चों से अलग व्यवहार करता है या फिर वो और बच्चों से अलग रहता है, इसका कारण ये नहीं है कि वो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता है, इसका कारण ये है कि उसका ब्रेन इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। डॉक्टर की बात ना तो आस्तिक के समझ में आ रही थी ना ही अरुणिमा के समझ में आ रही थी, और अरुणिमा ने हैरानी जताते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर, ब्रेन इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इंसान ब्रेन को अपने हिसाब से चलाता है ना? डॉक्टर हंसते हैं और हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ आप सही हैं मिसेज रायचंद, वो इंसान ही है जो ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन कई बार दिमाग आपसे आपके सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है और आपसे वैसे काम करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक हैरान हो जाता है और उसे अचानक से अपना वो पल याद आ जाता था जब उसका दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता था और वो एक मॉन्स्टर बन जाता था। डॉक्टर एक पेन उठाते हैं और आकाश के ब्रेन एक्सरे में एक जगह इशारा करते हुए कहते हैं, आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ से इंसान खुद को कंट्रोल करता है, और आकाश का यही हिस्सा ब्लॉक है, या फिर यूं कहें कि लॉक है, या फिर सीधे भाषा में आप ये कह सकते हैं कि आकाश के इस हिस्से में ब्लॉकेज है। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। अरुणिमा सांस चढ़ने लगी थी और वो घबराने लगी थी। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर, इतना छोटा बच्चा है, उसे ब्लॉकेज कैसे हो सकता है, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर रायचंद आप पहले गुस्सा मत कीजिए, मैंने ये कब कहा है कि उसके दिमाग में ब्लॉकेज है, मैंने कहा है उसका दिमाग इस हिस्से से ब्लॉक है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक थेरेपी है, आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कुछ सालों के इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरुणिमा घबराते हुए आस्तिक के हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अगर ऐसी बात है तो फिर इसका इलाज क्या है, आप हमें बताइए, मैं उसका अच्छे से अच्छे जगह पर इलाज करवाऊंगा और कितनी जल्दी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये कोई पक्का नहीं है कि कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ इसका इलाज इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो थेरेपी होती है वो एक स्पेशल थेरेपी होती है जिसके एक्सपर्ट इस समय अमेरिका में रहते हैं। अगर आप आकाश का इलाज अमेरिका में करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है इसके ठीक होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं कोई सही समय नहीं बता सकता हूँ, ये कितना भी हो सकता है, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, आकाश को ठीक होने में कितना समय लगेगा ये तो या तो आकाश जानता है या फिर उसका दिमाग। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ मिस्टर रायचंद, इस इलाज में खर्चा बहुत आएगा, इस थेरेपी की कीमत ही लाखों में होती है। आस्तिक जल्दी से कहता है, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मुझे थेरेपिस्ट की पूरी डिटेल सेंड कीजिए, मैं जल्द से इस बारे में अपनी फैमिली के साथ बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद अरुणिमा आकाश के वार्ड के बाहर खड़ी थी। आकाश और अनंत बेड पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ कुछ खेल रहे थे। आकाश के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों के इशारे से अनंत के साथ खेल रहा था। अरुणिमा के आंसू बह रहे थे और उसका दिल रोने लगा था। आस्तिक अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखता है तो अरुणिमा आस्तिक को देखकर उसके सीने से लग जाती है। वो बहुत जोर से रोने लगती है, लेकिन उसने अपना मुंह दबा लिया था ताकि बच्चे उसकी आवाज ना सुन सके। मन तो वैसे आस्तिक का भी रोने का कर रहा था, लेकिन अगर इस समय वो कमजोर पड़ जाएगा तो अरुणिमा को कौन संभालेगा। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए कहता है, अरुणिमा फिक्र मत करो, मैं आकाश को कुछ नहीं होने दूंगा। अरुणिमा बहुत हिम्मत करते हुए आस्तिक से अलग होती है और एक नजर आकाश को देखने लगती है। वो रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर आस्तिक से कहती है, अगर कुछ मांगू तो क्या दोगे मुझे। आस्तिक भी अपनी आंखों में अरुणिमा के लिए एक प्यार भरा एहसास रखता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, ये जान तुम्हारी है, चाहे तो मांग लो। लेकिन अरुणिमा रोते हुए आस्तिक की आंखों में देखकर बहुत हिम्मत के साथ कहती है, आप आकाश को ले जाइए। आस्तिक एकदम से हैरान हो जाता है। उसे पता था कि अरुणिमा ने ये बोलते वक्त अपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। अरुणिमा आकाश और अनंत से कितना प्यार करती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ऐसे में आकाश को से दूर भेजने की बात सोचकर ही अरुणिमा की जान निकल रही थी।